शांति, ओम शांति। हम सभी संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं जिनको डायरेक्ट शिव बाबा ने ब्रह्मामुख से अडॉप्ट किया, ऐसी श्रेष्ठ जन्मधारी मर्जीवा जन्मधारी भाग्यवान आत्माएं पूरे कल्प में संगम युग पर ही होती हैं। ऐसी खुश नसीब खुशनुमा जीवन सारे कल्प में भी नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि ये संगम का समय डायमंड एज है, हीरे तुल्य हीरे समान। ये संगम का समय जब हम सब आत्माएं अपने प्राण प्यारे पिता परमात्मा से सन्मुख मिलन मना सकती हैं, हम सबको उनका सत्य परिचय है, उनके द्वारा जो हमें सत्य ज्ञान मिला है उस सत्य ज्ञान के आधार से हमारी ऐसी श्रेष्ठ पवित्र चरित्रवान जीवन बनी है। परमात्मा की पालना, उनकी पढ़ाई, उनकी श्रेष्ठ मत, उसका भाग्य शायद कभी विचार किया हो सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सका, जो हम सब ब्राह्मण आत्माओं को डायरेक्ट प्राप्त है। भक्ति में तो समझते थे भगवान को पाना पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन हम सब का अनुभव इस समय कि हम डायरेक्ट उनकी पालना में पल रहे हैं, उनके द्वारा इतना सत्य ज्ञान हम सब बच्चों को प्राप्त हुआ है, इतनी ढेर सारी प्राप्तियां कभी लिस्ट निकालना। एक बार मैं दादी जी के पास बैठा था तो दादी जी ने मुझसे कहा कि संगम युग पर कितनी प्राप्तियां हुई हैं, तुम एक लिस्ट बनाओ। वो लिस्ट मैंने मधुबन से पत्र पुष्प के माध्यम से भेजी भी है सेंटर्स पर। कितनी ढेर सारी अमृत वेले आंख खुलते ही किससे हमारा मिलन होता है, वरदानों से हमारी झोली भरती है। उसके बाद स्वयं सुप्रीम शिक्षक परमात्मा परम शिक्षक बन करके हम सबको इतनी ऊंची नॉलेज तीनों कालों की, तीनों लोकों की, आत्मा की, परमात्मा की, घर की, 84 जन्मों की, कर्मों की, कितनी स्पष्ट नॉलेज देते हैं और अपने एक एक बच्चे को अपने समान मास्टर नॉलेजफुल बना देते हैं। इसका जब कभी चिंतन करो कि सारी दुनिया में, बाबा कई बार कहते हैं ये देवताएं भी बुद्धू हैं, उनको भी पता नहीं है कि सृष्टि चक्र कैसे चलता है, और आप संगम योगी ब्राह्मण बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ कभी समान चिंतन में लाते होंगे, और केवल टाइटल नहीं दिया, केवल पॉइंट नहीं सुनाई लेकिन उसका अनुभव भी कराया। एक है ज्ञान की पॉइंट को सुन लेना, नोट कर लेना, दूसरों को सुना देना, और एक है उसकी शक्ति का अनुभव करना। बहुत अच्छी एक रूह रिहान हम सबकी आपस में होती थी कि ज्ञान एक लाइट है और हर ब्राह्मण आत्मा को लाइट मिली है, इसलिए अंधकार हो ही नहीं सकता। अंधकार में तो कितनी ठोकरें लगती हैं। हम सबके पास ज्ञान की टार्च है, ज्ञान की रोशनी है, लेकिन ज्ञान की रोशनी होते, प्रकाश होते, क्या ज्ञान शक्ति स्वरूप में अनुभव होता है? भाग्यवान आत्माएं वो हैं जिन्होंने केवल ज्ञान को पॉइंट के रूप में नोट नहीं लिया, लेकिन उनके जीवन में वो ज्ञान समाया हुआ है। कई बार हम दूसरों को तो ज्ञान बड़ा अच्छा, परिस्थितियां आई, कोई पेपर आया, कोई बात हुई, फटाफट ज्ञान की पॉइंट सुना देते हैं, और उसमें भी एक ज्ञान हम सबको इतना पक्का हो गया है, ये तो ड्रामा है, हर आत्मा का पार्ट है, जो करेगा वो पाएगा, अपने अपने हिसाब किताब हैं। लेकिन जब खुद के सामने ऐसी कोई परिस्थिति आती, ऐसा पेपर आता, तो फुल स्टॉप लगता है। ज्ञान बाबा ने इसीलिए दिया कि सेकंड में संकल्प स्टॉप हो जाए। अगर कोई आत्मा ज्ञानी हो करके भी क्वेश्चंस में, प्रश्नों में उलझती है, क्यों, क्या, कैसे, कब, प्रश्नों में उलझने वाली आत्मा कभी भी प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकती। इतनी खुश नसीब जीवन, खुशनुमा जीवन का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चे पहले अपने भाग्य को अपने ही दिव्य नेत्र से देखें। संगम युग पर हमारे सर्व संबंध किसके साथ हैं? देहधारी संबंधों में तो हम सब जानते हैं, बाबा कई बार कहते हैं संबंध माना जहां से स्नेह और सहयोग मिले, वो संबंध जो सतयुग में थे। आधा कल्प जिन संबंधों से हम सब ने इतना सुख प्राप्त किया, खुशी प्राप्त की, कलयुग के अंदर वही संबंध बंधन बन गए। कई प्रकार के बंधनों में बंधी हुई आत्मा कभी खुशी का अनुभव नहीं कर सकती, खुश नसीबी का अनुभव नहीं कर सकती। कभी आपने नोट किया है कि मैं किन किन बंधनों में बंधा हुआ हूँ, या सब बंधन काट करके एकदम स्वतंत्र उड़ता पंछी बाबा की याद में बैठाया जाए कि बैठ जाओ, एक सेकेंड में इस शरीर से आत्मा उड़ जाए, कोई भी रस्सी अपनी तरफ खींचे नहीं, शरीर के पुराने हिसाब किताब के बंधन हैं, संस्कारों के बंधन हैं, विकारी संस्कार, देह विमान वाले संस्कार खींचते हैं, संबंध खींचते हैं। सबसे बड़ा बंधन मन का ही बंधन है। हम सब अगर खुशनुमा जीवन का अनुभव करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज्ञान और योग की शक्ति से बंधनों को काटना होगा। किसी भी प्रकार का बंधन खुशी का अनुभव करने नहीं देता। इतनी खुश नसीब जीवन बंधन में बंधी हुई हो तो खुशी कैसे रहेगी? इसलिए सबसे बड़ा भाग्य संबंधों का भाग्य, एक से सर्व संबंध, जिस संबंध की आवश्यकता है सिर्फ उस संबंध में सच्चाई जरूरत है, सच्चाई की जरूरत है। सच्चे दिल से बाबा कहो तो बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, साजन का भी अनुभव कराता है, सखा का भी अनुभव कराता है, बच्चा भी बन जाता है, कभी सर्जन की जरूरत है तो सर्जन भी बन जाता है। हर संबंध से बाबा हमारा साथी साथ निभाता है और कईयों को इसका बड़ा अच्छा अनुभव है। एक बार मैं एक सेंटर पर गया, अचानक गया था बिना फोन किए, बोर्ड देखा, मेरी गाड़ी जा रही थी तो मैंने कहा यहाँ सेंटर है, तो बोलते हाँ यहाँ सेंटर है, भाई जो चला रहे थे गाड़ी, कहा रोको थोड़ा मिल के आते कौन है यहाँ। तो जब वहां गया तो एक अकेली बहन थी, सेंटर था, और वो बाबा को इतना प्यार से सर्व संबंधों से रोज पत्र लिखती थी और इतना उसको विश्वास था कि जो कुछ मैं बाबा को कहती हूँ बाबा मेरे दिल की बात सुनता है। तो जब मैं पहुंचा तो देख करके कहती, भाई साहब आप कैसे आए? हमने कहा ऐसे मैं जा रहा था तो बोर्ड देखा, तो हमने कहा बहन कौन है मैं मिल के जाऊं। कहती आपको, आप अपने मन से नहीं आए हैं, मैंने ये देखो क्या लिखा है अभी बाबा को। उसने पत्र लिखा था बाबा के कमरे में बैठ करके, बाबा बहुत दिन हो गए मधुबन की भंडारी भर गई है, मधुबन में कुछ भेजा ही नहीं है, आप कोई को भेज दो ये भंडारी ले जाए। और वो पत्र लिखा हुआ था उसका, और सभी बातें रोज की डायरी, रोज का पत्र एक अलग अलग संबंध से लिखा था। मुझे बहुत खुशी हुई इस पत्रों को देख करके, उसकी कॉपी मैंने हाथ में ली, मैंने कहा मुझे सब दे दो ये। फिर मैं डायरी लाया, उसकी टाइप कराई, सब संबंध, एक छोटे से छोटे संबंध को भी उसने बाबा के साथ जोड़ा और इतना प्यार से। कई बार कहते मेरा योग नहीं लगता है, मेरे को खुशी का अनुभव नहीं होता है, मैं क्या करूं, लेकिन बाबा को कोई बहुत दिल से सच्चे प्यार से संबंध से पत्र लिखे, बाबा से दिल की बातें करे, रूह रिहान करे। तो जो कहते हैं ना कोई तो साकार में चाहिए, कई आत्माएं अभी तक भी बाबा को पहचान नहीं पाई है, वो जो है जैसा है जिस रूप में अपने बच्चों को संगम पर मिला है। बाबा तो कह देता है मैं बच्चों का सर्वेंट हूँ, ओबीडियंट हूँ, मैं बच्चों की सेवा के लिए संगम पर आया हूँ, लेकिन शायद कोई ही बच्चे हैं जो बाबा को इस प्रकार से यूज करते हैं। इतना दिल का स्नेह, सच्चे दिल का सौदा है ये। अगर सच्चाई है अंदर तो बाबा को और कुछ नहीं चाहिए। सच्चे दिल पर साहेब राजी, वो भोलानाथ है, बहुत जल्दी बच्चों पर प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। इसलिए अगर इस खुश नसीबी का अनुभव करना है, सारे साथ छोड़ जाएंगे, सब संबंध दुख और धोखा दे सकते हैं, लेकिन बाबा हर बात में, हर परिस्थिति में, हर समय साथ निभाने के लिए संगम पर बंधा हुआ है। इससे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं हो सकता है जिसके चारों ओर छतरी के रूप में बाबा रहता हो। है कोई ऐसा? मुझे तो ये बहुत अच्छा अनुभव होता है। कई बार कोई कहता है आप अकेले जाएंगे देश विदेश में। एक बार मैं यहाँ से विदेश जाने लगा, अमेरिका तक अकेले टूर, कहते आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको ये है, आप कैसे अकेले जाएंगे, कोई साथ ले जाओ ट्रांसलेशन करने वाला, वहाँ की भाषा ऐसी विचित्र है, अनाउंसमेंट ऐसी होती है, आप कैसे समझ पाएंगे। मैंने कहा मेरे साथ जो है वो कोई को दिखाई नहीं देता, वो साथी इतना अच्छा है जो टिकट भी हमको नहीं खर्च करना पड़ता है। और कई जगह ऐसे अनुभव हुए प्रैक्टिकल में। एक जगह पर जब न्यूयॉर्क से मुझे कहीं जाना था, हमारे भाई बहन हमको स्टेशन वहां पर छोड़ के गए प्लेन के लिए, एरोड्रम पर बोर्डिंग पास बन गया, सामान सारा चला गया, जब अंदर गया तो कहते हैं ये फ्लाइट तो 12 घंटे लेट है। अब मैं बैठा हुआ, वो सब चले गए जो मेरे को छोड़ने आए थे, मैंने उनसे नंबर भी नहीं लिया था, सामान भी चला गया और मैं अकेले बैठा हूँ ऐसे। 12 घंटा यहाँ बैठना पड़ेगा, न मैं खाना लेके आया हूँ, न मैं कोई चीज है, न कुछ। बाबा को ऐसे प्यार से याद कर रहा था, बाबा अभी देखें कैसे मुझे आप पहुंचाएंगे, किस प्लेन से पहुंचाएंगे। इतने अच्छे अनुभव हुए। 10-15 मिनट के बाद ही सामने जहां जाता था उसका फोन आया, और मेरे पास नहीं आया, वहां के अधिकारियों के पास आया कि एक भाई सफेद ड्रेस में वहां बैठा होगा, ये नाम है उसका, उसका बोर्डिंग पास बन गया है शायद, उससे मेरी बात करा दो। अब वो ढूंढते हुए मेरे पास आया। जब मैंने बात की, बताया कि ये कह रहे हैं 12 घंटे लेट है, तो कहता आप कोई फिक्र नहीं करना, मैं अभी कोई रास्ता निकालता हूँ, आप दूसरे प्लेन से आ जाना और दूसरी जगह पर आपको हम पहुंचा देंगे, वहां हम रिसीव कर लेंगे। अब मैं अकेला, कोई सामान नहीं, कुछ नहीं, एक छोटा थैला हाथ में था, मैं बैठ गया दूसरी फ्लाइट में। कहां जाएगी मुझे पता नहीं। जहां मैं उतरा वहां पर कोई एड्रेस नहीं था, कोई भी सेंटर नहीं था, और मैं अकेले वहां बैठा था जब तक दूसरी फ्लाइट वहां से वहां की मिले। एक भाई दौड़ करके आया एरोड्रम पर, बहुत खाली खाली सुनसान फ्लाइट, वो एरोड्रम था पूरा। तो आया दौड़ के कहता है आप आबू से आए हैं। मैंने कहा मैं आबू से आया हूँ, ये कैसे आपको पता है। कहता है मैं भी सिरोही डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मेरे बच्चे इस स्थान पर पढ़ते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनसे मिलने आया था, मैं जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं। जब मैंने अपना बोर्डिंग पास वगैरह दिखाया तो कहता अच्छा अच्छा ठीक है, आप बैठे रहो, मैं सब ढूंढ करके आता हूँ, क्यों कहाँ फ्लाइट मिलेगी, कहाँ बिठाना है आपको, मैं बिठा देता हूँ। मैंने कहा बाबा तू कहाँ से कहाँ मदद करने के लिए किसको भेज देता है। मैंने किसी को नहीं कहा और कभी डरा नहीं, निश्चिंत होकर के बाबा के साथ का अनुभव। ऐसी खुश नसीबी संगम पर कई बार बाबा ने देश विदेश में अनुभव कराई है। साथी तो सच्चा बाबा ही है जो कहीं पर भी मदद के लिए आ जाता है, लेकिन सच्चाई बहुत जरूरत है, ध्यान देना। कहीं भी कोई देहधारी की तरफ ध्यान गया कि अगर वो भाई होता, वो बहन होती, वो मदद कर देते, वो साथ दे देते, तो बाबा फिर साक्षी हो जाता है, साथ नहीं निभाता, फिर कहता देखें उसकी पहले मदद ले ले। तो हम सब इतने खुश नसीब हैं जो संगम युग पर बाबा के साथ का हर पल अनुभव करते हैं। और संबंध भी देखो, संपर्क, संबंध के साथ संपर्क कैसा है, जो किसी भी कोने में चले जाओ, हर स्थान पर अपने बाबा के बच्चे, अपने भाई बहने रहते हैं, हर स्थान पर बाबा के घर हैं, ऐसा संपर्क तो दुनिया में मैं समझता हूँ किसी का भी नहीं होगा। जो किसी भी कोने में कहीं भी चले जाओ, बाबा अपने बच्चों को कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पर रिसीव कर लेता है करके। पूरे विश्व के अंदर सब जगह बाबा ने ऐसे घुमाया और बड़े अच्छे अच्छे ऐसे अनुभव कराए। संपर्क किसके साथ है? अरे बीज को पकड़ा है, वृक्ष तो हमारा ही है, ध्यान रहता है, बीज को हमारा, बीज हमारा है, और जिसके हाथ में बीज है वृक्ष कहाँ जाएगा। ये पूरे मानव सृष्टि का वृक्ष, उसका बीज रूप बाबा मेरा बाबा है, रहता है नशा। उस नशे से देखो कितनी खुश नसीब आत्माएं हो हम ब्राह्मण आत्माएं, जो डायरेक्ट बीज रूप बाबा के साथ हमारा संबंध है। और जिसने बीज रूप बाबा को सच्चा संबंधी बनाया है, माया का बीज अपने आप खत्म हो जाएगा, उससे युद्ध करने की जरूरत नहीं है, मेहनत नहीं है। बाबा कई बार कहते हैं अगर मेरे बच्चे जिन्होंने द्वापर से लेकर के इतनी मेहनत की, कितना भटके हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, कितना सब कुछ खर्च कर दिया। साकार बाबा की मुरली में कभी कभी आता है, अरे बच्चे, मैंने तुमको इतना धनवान बनाया, इतना संपत्ति दी, हीरे जवाहरात के महल दिए, तुम कैसे बन गए, कहाँ गंवा दिया सब कुछ? बाबा पूछता है ना कभी कभी बच्चों से, तुम्हारी शक्ल अकल कैसी थी और क्या बना दिया माया ने तुमको? सचमुच बाबा ने हम सबको जो बनाया है, अभी संगम युग पर उसका भी अनुभव करो। ऐसी श्रेष्ठ जीवन, इतनी अखुट संपत्ति। दादी जी का स्लोगन क्या रहा था? सफेद कपड़े, खीसा खाली और मैं विश्व की मालिक। ऐसी हमारी जानकी दादी का स्लोगन हम सब सुनते आए हैं, और वही नशा उनको था। कुछ नहीं रहा है हाथ में, लेकिन पूरे विश्व में कहीं भी चले जाओ सब कुछ है। मैं जब जाने लगा तो हमारे रमेश भाई जी यहाँ मधुबन में थे, तो कहते हैं, पता है आपको, अगर आपके हाथ में, आपके पासपोर्ट में डॉलर नहीं होंगे तो आपको सिटी के अंदर घुसने नहीं देंगे। तो हमने कहा, ठीक है भाई साहब, हम तो डॉलर रखते नहीं, आप दे दो हमको। उन्होंने मुझे 2,000 डॉलर दिए और दिया, और उसमें लिखवाया, भाई इनके साथ इतना पैसा है। मैं वो पैसा लेकर के डॉलर लेके गया। शायद एक स्थान पर मुझे वो ट्राली का 3 डॉलर देना पड़ा, और उसकी जगह पर कितना सारा साथ में और आ गया। कोई खर्चा नहीं, सब जगह बाबा के बच्चे हैं, रिसीव करते हैं, ले जाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, घुमाते हैं। इतना सुंदर परिवार, निस्वार्थ भाव, कोई हमारा स्वार्थ नहीं, कोई लेना देना नहीं, हम उनको क्या दे रहे हैं। लेकिन ऐसा सच्चा प्यारा परिवार, संगम पर बच्चों को प्राप्त होता है, और ब्राह्मण बच्चों को प्राप्त होता है, सारे कल्प में किसी को नहीं मिलता है। किसी को कोई को मिले तो ढूंढ करके आ जाओ, बाबा कहता ढूंढ के आओ दुनिया में। आज एक कोई बीमार पड़ता है, एक को कोई तकलीफ होती है, सैकड़ों फोन आ जाते हैं, कहाँ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। इतना पूछने वाले, इतना ध्यान रखने वाले, हर बात में साथ देने वाले, सहयोग देने वाले, निस्वार्थ परिवार। क्या स्वार्थ है किसी का, क्या लेना देना है हमारा। लेकिन बाबा कहता है, संगम पर वही बच्चे आपस में मिले हो। कौन मिले हो? जो सारे कल्प में कहीं न कहीं किसी न किसी संबंध में आए हो। ये परिवार कौन सा है? आप सब क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हो? जरूर सतयुग से लेकर के पूरे कल्प में कहीं न कहीं हमारे संबंध रहे हैं। वो ज्ञान नहीं होगा, वो समझ नहीं होगी उस समय कि हम एक परिवार के, एक ईश्वरीय परिवार के बने थे। तब इतना बड़ा दैवी परिवार पूरे कल्प में साथ रहा है, कहीं न कहीं किसी न रूप में, किसी न किसी रूप में हम साथी बन करके रहे हैं। लेकिन कई ब्राह्मण आत्माएं इस नशे को, इस खुशी को अनुभव नहीं कर पाती, इस खुश नसीब जीवन का अनुभव नहीं कर पाती। आप सब ध्यान देना इस पर, जब तक खुशी का अनुभव नहीं है तब तक योग नहीं लगेगा। मैं हमेशा कहता हूं, योग के 3 आधार हैं। एक, बहुत हल्कापन, बहुत हल्का। किसी भी प्रकार का बोझ लेने वाला योगी नहीं बन सकता, किसी भी प्रकार का बोझ हो, चाहे संबंधों का हो, चाहे संस्कारों का हो, चाहे जवाबदारियों का हो। लौकिक अलौकिक जवाबदारियां बहुत सारी हैं, बेचारा बोझ के नीचे दबा हुआ है। योगियों का आसन क्या है? योगियों का आसन कमल आसन है, कमल का फूल है। अब फूल पर कोई योगी बैठ करके आसन लगा के योग करेगा क्या? ये न्यारे प्यारे की निशानी है, निलिप्त भाव की निशानी है कि परिवार में रहो, समाज में रहो, सबके बीच में रहो, लेकिन पानी की छींटे न लगे, विकारों के छींटे न लगे। ऐसा सुंदर बाबा ने हमें तपस्वी जीवन दी है, जो हम बहुत डबल लाइट हल्के होकर के बाबा को याद करते हैं। देखना, अगर कोई बोझ हो ना किसी के ऊपर, हमारी माताएं, बोझ होता है ना बच्चों का, परिवार का, अगर कोई हो तो यहाँ पर बाबा के आगे बैठ करके पत्र लिखना, बाबा ये बोझ आप ले लो। बाबा बोझ लेने के लिए आया है, उतारने के लिए आया है, इसलिए बिल्कुल हल्के हो जाओ, देखो उड़ने लगोगे। अपने आप। वो कहते हैं वो योगी कई होते थे जो बैठे बैठे ऐसे ऊपर उठ जाते थे। हम कहते हैं शरीर से ऊपर उठने की बात नहीं है, बुद्धि से हम ऊपर उड़ जाते हैं, इस संसार से हम पार चले जाते हैं। लेकिन पार तो वही जा सकते हैं जिसके ऊपर कोई भी चिंतन, व्यर्थ चिंतन का बोझ नहीं है, कोई हिसाब किताब का बोझ नहीं है, बहुत हल्के बन जाओ। दूसरा, जितना आंतरिक नशा है, खुशी है, उतना योग सहज है। अगर खुशी नहीं है, बैठते रहो सूखे सन्यासी जैसे, कोई आनंद ही नहीं आ रहा है, बैठे हैं, चेहरे पर भी रौनक नहीं आती, थोड़ी देर बाबा बाबा करते हैं फिर सोने लगते हैं। इसलिए ध्यान देना, खुशी के संकल्प करो, प्राप्तियों को याद करो, भगवान मिला, उसने इतना अच्छा जीवन दिया, इतनी ऊंची प्राप्तियां कराई, उस नशे में उस खुशी में बैठ करके बाबा कहो और बाबा की गोद में चले जाओ। तीसरी है दुआएं। हर ब्राह्मण आत्मा को ध्यान रखना है, अगर जरा भी कोई आत्मा मुझे सूक्ष्म रूप में भी बद्दुआ दे रही है, खुशी नहीं रहेगी, खुशी को छीन ले जाएगा। इसलिए सब बहुत ध्यान देना। ये शब्द तो भक्ति का है, आशीर्वाद दुआएं, बाबा कई बार कहता मैं नहीं करता हूं, लेकिन उसकी दुआओं के बिना मेरा बेड़ा पार नहीं होगा। सबसे पहले माँ बाप की दुआएं मिले, कहते हैं ले लो दुआएं माता पिता की, माँ बाप की, तो सिर से उतर जाएगी गठरी पाप की। लेते हो सभी दुआएं माता पिता की, शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, ज्ञान सूर्य बाबा की, ज्ञान चंद्रमा माँ की दुआएं मिले, बस बाबा मैं आपका सपूत बच्चा बन के रहूं, मैं आपका आज्ञाकारी बच्चा बन के रहूं। जरा भी किसी ने श्रीमत में मनमत मिक्स कर दी, उसको बाबा की दुआएं नहीं मिलेंगी। अगर बाबा की दुआएं लेनी है तो श्रीमत सिर माथे, जी बाबा, हाँ जी बाबा, हमारी माँ ने, मम्मा ने इसी तरह से बाबा की दुआएं लेकर के नंबर वन ले लिया। दादियों ने ऐसे ही बाबा की दिल को जीत लिया, सिर्फ हाँ जी, कभी क्वेश्चन नहीं किया। तो हम सब माता पिता की दुआएं लें, अपने निमित्त जो बड़े हैं, जिन्होंने हमें इतना योग्य योगी बनाया है, जिन्होंने हमें हमारे में इतना विश्वास रखा है, ऐसे निमित्त आत्माओं की दुआएं लें, अपने हमजिंस साथियों की दुआएं लें, उनको साथ दे करके, सहयोग दे करके, उनके समय पर कोई चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करके, उनको आगे बढ़ा करके, अपने से भी ऊंचा उठा करके उनकी दुआएं ले लें। आत्मा एकदम प्रफुल्लित हो जाएगी, खुश नसीबी का अनुभव करेगी। लेकिन अगर कोई भी किसी भी कारण से असंतुष्ट हो गया, नाराज हो गया, विशद बाबा कहता नाराज होने वाला राज को नहीं जानता। राजी तो वही रह सकता है जो ड्रामा के हर राज को जानता है। लेकिन मेरी किसी एक्टिविटी के कारण कोई नाराज हो गया, अपसेट हो गया, वो बद्दुआएं देगा। इसलिए अगर सचमुच खुश नसीबी का अनुभव करना है, खुश नुमा जीवन बनानी है, तो बाबा कहता है बच्चे संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। संतुष्ट आत्माएं किसी से भेंट नहीं करती, ईर्ष्या नहीं करती। संतुष्टता ये नहीं है कि मैं खाली हूं और कहूं मैं संतुष्ट हूं, मैं हर शक्ति से, हर गुण से, हर नियम मर्यादा में एक्यूरेट चलते हुए भरपूर हूं, तृप्त हूं, तब संतुष्ट हूं। और मैं संतुष्ट हूं तो मेरे साथ जो संपर्क संबंध में आए वो संतुष्ट रहे, संतुष्ट हो जाए, उसकी दुआएं मिल जाएंगी। और ऐसी दुआ लेने वाली खुश नसीब आत्मा बाबा के साथ का बहुत अच्छा अनुभव करती है। योग लगाने की उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप सब अपनी अखुट संपत्ति को देखो। दो बातें आती हैं, कहते हैं सदा खुश नसीबी का अनुभव वो कर सकते हैं जिनको अच्छी खुराक मिलती है, जिनके पास अखुट खजाना है। खुशी एक ऐसी खुराक है, कहते खुशी की खुराक खा लो आत्मा तंदुरुस्त रहेगी। वो खुराक कितनी भी खाओ लेकिन खुशी न हो तो वो शक्तिशाली बनाएगी नहीं। इसलिए खुशी खुराक है और खुशी एक बहुत बड़ा खजाना है। बाबा ने हम सबको खुशी का इतना खजाना दिया है, चिंतन करो कितने खजाने मिले हैं। ब्राह्मण आत्माओं जैसा संपत्तिवान कोई नहीं। अब लोग ये तो नहीं सोच रहे हो कि तो सब बातें बता रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कोई कोई ब्राह्मण ये समझते हैं शायद ये बातें ही हैं। लेकिन जिसके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना ज्ञान का है, उसके पास स्थूल में भी कोई कमी नहीं है। सब कुछ भरपूर है। हर प्राप्ति से वो आत्मा संपन्न अनुभव करती है। आज हमको बाबा ने ज्ञान का खजाना दिया, इतने गुणवान बनाया गुणों का खजाना दिया, इतनी शक्तियां दी शक्तियों का खजाना दिया। जिस शक्ति की जब जरूरत है आह्वान करो आ जाए। कई बार ऐसे होता है, योद्धा युद्ध के मैदान में होता है, शस्त्र सब साथ होते हैं लेकिन दुश्मन जब सामने आता है तो शस्त्र भूल जाते हैं। हैं साथ, कईयों के पास सब शक्तियां हैं, जमा की हैं योग में ज्ञान से पढ़ाई से, लेकिन जब माया परिस्थितियां आती हैं तो किस शस्त्र को यूज करना है, किस शक्ति का आह्वान करना है, उसको बुलाते रहते हो आती नहीं है, भूल जाती, स्मृति में नहीं रहती। इसलिए कई बार बाबा कहता है बच्चे बीच बीच में अपने शस्त्रों को चेक करते रहो, मालिश करते रहो, सफाई करते रहो, है मेरे पास या नहीं है। अगर योग से मुझे 8 शक्तियां प्राप्त हो रही हैं तो क्या वो समय पर मेरे साथ हैं? अभी सहन करने की शक्ति चाहिए, कभी सामना करने की शक्ति चाहिए, कभी समाने की शक्ति चाहिए, कभी समेटने की शक्ति चाहिए, और सबसे बड़ी शक्ति तो समय अनुसार परखने की चाहिए। अगर आपने परख नहीं पाया तो कहां कौन धोखा देके चला जाएगा पता ही नहीं है। परखना, निर्णय कर लेना, तुरंत निर्णय करके फैसला करके वो कर लेना। संगम के इस समय पर जहां पर भी बुद्धि के विस्तार हैं, बाबा कहता है बच्चे जब कहीं भी जाना होता है तो विस्तार को समेट लिया जाता है, जाना है। सबके ध्यान पर रहता भी जाना है, जाना है और फिर आना है। और जाना है तो क्या मेरी बुद्धि का विस्तार जो है संबंधों में है, पदार्थों में है, संस्कारों में है, बहुत सारा बुद्धि का विस्तार है, अगर मैंने उस विस्तार को समेटा हुआ है तो सहज रीति से बाबा के साथ चल सकेंगे, उड़ सकेंगे। इसलिए समेटने की शक्ति बहुत वर्तमान समय आवश्यक है। एक एक शक्ति को देखो, क्या सचमुच ये सब शक्तियां मेरा साथ दे रही हैं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, क्या रटने से वो शक्ति आ जाएगी? कोई 108 बार क्या 50 बार लिखे, लिखता जाए लेकिन उसका अभ्यास न करे। जब कोई बात आई है सहन करना है, यहाँ चुप हो जाना है, यहाँ जवाब देना यहाँ नहीं देना है। जितने टकराव होते हैं, खुशी का एक गुम होने का एक मूल कारण, खुशी गुम होने का एक मूल कारण है आपस में एक दूसरे को पहचानते नहीं और तुरंत जवाब देकर के टकराव की स्थिति बनाते। जहां टकराव हो जाते हैं आपस में, संस्कार टकरा जाते हैं, तू मैं हो जाता है, वहां खुशी फौरन गायब हो जाती है। कितनी भी प्राप्तियां हो, कितना भी अच्छा जीवन चल रहा हो, लेकिन कोई टकरा गया गया सामने से और उस समय हमने कुछ शब्द बोल दिए, संबंध बिगड़ गए, हमारी खुशी छिन गई। बाबा तो कहते बच्चे ये बातों की चिंता करते हो, बाप को भूल जाते हो। जहाँ बातें हैं वहाँ बाबा नहीं है, और जहाँ बाबा है वहाँ ये बातें नहीं है। लेकिन अधिकतर ब्राह्मण आत्माओं की खुशी बातों के कारण खत्म हो रही है। ऐसी बात थी, इसने ऐसे बोल दिया, ये तो कहना नहीं सुनती है, सुनता है, मुझे कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, और बोल दिया, संबंध बिगड़ गए, टकराव हो गया, जब आता है मूड खराब, उसको देखते ही मूड खराब, खुशी गायब। हम सब खुशनुमा खुश नसीब बच्चे हैं, इसलिए बहुत सम्मानजनक बोल। मैं हमेशा कहता हूँ योगी वो हैं, सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी वो हैं जो शीतल काया वाले हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे को चेक करना चाहिए, क्या मैं बाबा के साथ योग लगा करके एक तरफ ज्ञान सूर्य बाबा सत्यता की अथॉरिटी और दूसरी ओर चंद्रमा मां शीतलता की अथॉरिटी, हमारा कनेक्शन दोनों से, बाप दादा को हम याद करते, एक को नहीं याद करते। अब बाप दादा की याद करने वाली आत्माएं क्या इस बैलेंस से चलती हैं? सत्यता भी है, कहते हैं सच तो बिठो नच, खुशी में वो रह सकता है जो सच्चा है अंदर से। लेकिन कई सच्चे जो होते हैं उस सच्चाई को ऐसे प्रकट करते हैं तो जो टकराव पैदा कर देते हैं। बाबा कई बार कहते हैं उस सच्चाई में शीतलता चाहिए, स्नेह चाहिए, सभ्यता चाहिए। अगर सभ्यता नहीं है तो सत्यता वो सत्यता नहीं रहती। इसलिए योगी वो है जो सत्य है लेकिन शीतल है, उत्तेजनाएं नहीं है। मैं सच्चा हूं इसलिए मुझे तो सहन नहीं होता, ये गलत करता है, ये झूठ बोलता है, ये ऐसे करता है, ये मर्यादा का उल्लंघन करता। कई लोग ऐसे सोच सोच करके सत्यता होते हुए भी असत्य हो जाते, झूठे हो जाते, कोई उनको मानता ही नहीं, उनकी सुनता ही नहीं, फिर डिस्टर्ब होते हैं, फिर कभी खुशी का अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए ध्यान देना, योगी वो है जिसके हर अंग शीतल है, किसी भी प्रकार की उत्तेजना नहीं है, जिसका स्वभाव बहुत सरल है, जिसकी वाणी में सम्मान है, दूसरों को सम्मान देने की भावनाएं हैं, जिसके व्यवहार में मधुरता है, जिसकी स्थिति बहुत निश्चिंत बेफिक्र बादशाह वाली है। अगर चिंताएं लगी हुई हैं तो योग क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? निश्चय है ना, किसके साथ हमारा कनेक्शन है? कोई देहधारी के साथ नहीं है, कोई मनुष्य आत्मा के साथ नहीं है, डायरेक्ट परमात्मा के साथ। हम सबको डायरेक्ट लाइन बाबा ने दी है, कितनी वंडरफुल बात है ये, देखता ना सा, डायरेक्ट लाइन है। किसी ने कहा नहीं है कि तुम इस दीदी के थ्रू बाबा के पास जाओ, इस भाई ने तुमको कोर्स कराया, इसको याद करके फिर उसको याद करो, इसकी मूर्ति बना करके रख लो सामने। भले ब्रह्मा बाबा का फोटो सबके साथ रहता है सामने, फिर भी ब्रह्मा बाबा कहता बच्चे मुझे नहीं याद करो, लेकिन जैसे मैं बैठा हूं तपस्या में ऐसे फॉलो करो, याद से बाबा को ही करो, फॉलो करो इसको। तो हम सब बाबा के बच्चे, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है बाबा के साथ वो कितने खुश नसीब हैं। कहीं भी बैठ जाओ, आज किसी भी कोने में थे, सबको 8 महीने 6 महीने सेंटर पर आने की मना थी, भैया आप लॉकडाउन के अंदर अपने अपने घरों में मुरली सुनो, योग करो। लेकिन जो सच्चे बच्चे थे वो बहुत अच्छी तरह से घरों में रह करके हर घर को उन्होंने पाठशाला बना दी, हर घर पाठशाला बन गए थे। पहले सोचते थे घर घर में कैसे केंद्र खुलेंगे, हर घर में केंद्र बन गए, और सब ने डायरेक्ट बाबा के साथ मिलन मनाया, योग किया, शक्तियां ली। कोई कोई अलबेले होंगे, मैंने तो इस बारी एक प्राइज रखी थी, मैंने कहा जिन्होंने इस लॉकडाउन के अंदर 7-8 महीने में एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया है, और एक दिन भी मुरली नहीं मिस की, और विधि पूर्वक की है, ऐसे नहीं बिस्तर पर पड़े हुए हैं और उठ करके सुन रहे हैं, ऑनलाइन, कई लोग ऐसे थे, कभी कभी मैं ऑनलाइन क्लास कराता था, मुरली सुनाता था, मैं देखता था ये तो बिस्तर पर ही बैठे हुए हैं, रजाई ओढ़ के बैठे हुए हैं, क्या स्टूडेंट लाइफ है क्या? ऐसे अमृत वेला किया हो, ऐसे योग किया हो, उनको नहीं, लेकिन जो जैसे स्टूडेंट लाइफ में आप सेंटर पर आते हैं, ऐसे ही अगर किसी ने घरों में बैठ करके विधि पूर्वक योग किया है, विधि पूर्वक मुरली सुनी है, विधि पूर्वक बाबा को भोग लगाया है, ऐसे बच्चों को तो जरूर प्राइज देनी चाहिए टीचर्स को, क्योंकि उन्होंने बाबा को डायरेक्ट अपना सर्व संबंधी बनाया है, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ के रखा है। तो इस समय कितनी खुश नसीबी की बातें सुनाऊं, लेकिन खुशी गायब क्यों होती है? खुशी गायब होती हो तो सब जानते हो जाती है, चलते चलते माया कहीं ना कहीं ऐसा धोखा देती है जो खुशी को ही छीन ले जाती। बाबा तो कई बार मुरली में जब कहते हैं बच्चे हिमालय जितनी बड़ी बात भी आ जाए, इतना बड़ा भी पेपर आ जाए सामने, तभी भी आपकी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। अरे बच्चे शरीर ही छूटेगा ना, दूसरा नया मिल जाएगा, खुशी से अगर मरोगे तो भी अच्छे जन्म अच्छे घर में जाओगे, दुखी होकर के परेशान होकर के डर करके क्यों शरीर छोड़े? जब इतनी सारी चैलेंज बाबा ने दी है तो कुछ भी हो कैसी भी बातें आए हमारी खुशी स्थायी रहे कायम रहे, लेकिन उसके लिए हद की इच्छाओं का त्याग चाहिए। जहां हद की इच्छाएं व्यक्ति की पूरी नहीं होती वहां वो खुशी गायब हो जाती है। अगर मान लो आपके अंदर इच्छा है मैं इतनी सेवा करता हूं, मैंने इतना समय पर सहयोग दिया है, मैंने ये किया है, मेरा नाम तो हो यज्ञ में, किसी को पता तो चले, बड़ों को तो बताया जाए, कईयों को अपने नाम की मान की महिमा की शान की बहुत भूख रहती है, और ऐसी हद की इच्छा वाली आत्माएं अगर वो नहीं पूर्ति हो रही, नहीं कोई ने पूछा, तो बहुत इंसल्ट महसूस करते हैं। और जो आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में इंसल्ट महसूस करती है वो कभी खुशी में नहीं रह सकती। दो ही बातें नुकसान कर रही हैं, या तो सोचते हैं मैं ही सब कुछ हूं, और या तो सोचते हैं मैं कुछ नहीं हूं, समझ रहे हैं दोनों बातें, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे को कौन जानता है, मेरी क्या वैल्यू है, ये निराशा उदासी हताशा ये संकल्प, बाबा कहता है इसको तो दिल शिकस्त की हार्ट की बीमारी हो गई, इसकी तो सारी नसें ब्लॉक हो गई, उमंग नहीं उत्साह नहीं खुशी नहीं, क्या सोचते हो? ये खुशी बीच बीच में गायब हो जाती है। कभी भी निराशा के संकल्प नहीं करो, अपने आप की महिमा करो, बाबा आप मिल गए और क्या चाहिए, कैसे बाबा की नजर आपके ऊपर पड़ी, कहां से ढूंढा, किधर से ढूंढ लिया, वंडरफुल बाबा है। कभी कभी कईयों के अनुभव में सुनता हूं कैसे किधर से बच्चों को ढूंढ लेता है, इस लॉकडाउन में हजारों बच्चों को ढूंढ लिया उसने, बहनों को नहीं जाने दिया, सेंटर्स खुले नहीं, ऑनलाइन सुन करके कितने बाबा के बच्चे बन गए, ढूंढ लिया बाबा ने, कहां कहां मेरे कोने में बच्चे बैठे हैं, और ऐसे गुप्त बच्चों को ढूंढ करके अपना बना करके वारिस क्वालिटी बच्चे निकाल दिए। अब कोई कहे मैं सेवा करता हूं मैंने नहीं किया, अब ये अभिमान वाला मैं, अरे किसी से भी कहां से भी बाबा किसी बच्चे को ढूंढ सकता है, अपनी सेवाएं करा लेता है। इसलिए कभी भी अभिमान वाला मैं जहां है वहां खुशी नहीं रह सकती, क्योंकि हद की कामना है, और वो हद की कामना नहीं पूरी होती है इसलिए खुशी गायब हो जाती है। और कोई भी बात हो गई, निराशा आ गई, उदासी आ गई, अपनी विशेषताओं पर ही ध्यान नहीं देते कि मेरे अंदर भी कोई विशेषता है जो भगवान ने मुझे अपना बच्चा बनाया है। कभी कभी सोचो तो जरूर कोई विशेषता देख करके उसने कहा होगा ना मेरे बच्चे। उस निराकार को पहचानना, उससे संबंध जोड़ना, उसके पीछे अपने आप को न्योछावर कर देना, उसको ही अपना संसार मानना, ये कोई कम विशेषता है क्या? अगर सचमुच कोई अपनी विशेषताओं का ध्यान रखता है तो कभी भी उदास निराश नहीं हो सकता है, उसको खुशी रहती है कि भगवान की नजर मेरे पर पड़ी है, उसने मुझे अपना बच्चा बनाया है, मैं भगवान का बच्चा हूं। तो इस नशे और खुशी में रहना कभी भी अभिमान और अपमान की फीलिंग में ना आना। हद की कामनाएं अगर हैं तो कभी भी आत्मा आंतरिक खुशी का अनुभव नहीं करती। दूसरी बात है, सबसे बड़ी चुहिया एक है, वो है ईर्ष्या। ईर्ष्या अगर अंदर आपस में कहीं भी हो गई कि इसको तो बहुत पूछा जाता है, ये तो बहुत अपना नाम कमा रहा है, करता मैं हूं नाम इसका होता है, कहीं न कहीं उसके बारे में कुछ न कुछ उल्टा बोलना, इधर उधर सुनाना, अगर उसकी कोई प्रशंसा कर दे, देखो इसको कोई पहचानता थोड़ी है। ईर्ष्या जहां पैदा हो जाती है वहां कई प्रकार के विघ्न पैदा होते हैं, और अगर बार बार विघ्न आए, मान लो कोई धागा बार बार टूटे और जोड़ा जाए तो मजबूत रहेगा क्या? इस प्रकार के विघ्न ब्राह्मण संसार में अगर आ रहे हैं, उस वायुमंडल में वो खुशी नहीं रह सकती। इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को अपनी प्राप्तियों से अपने आप को खुश रखना है। बाबा आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो मुझे दिया है वो कोई को संसार में नहीं दिया, मैं भेंट क्यों करूं, इसके पास इतना है, मुझे जो योग्यताएं दी हैं बाबा आपकी प्रभु देन मुझे प्राप्त हुई है, मैं उस पर चिंतन करूं, उस नशे खुशी में रहूं, मैं किसी से भेंट करके उसकी खुशी को छीन करके कहां खुश रह सकता हूं। इसलिए ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये सब खुशी गायब करने के कारण बनते हैं। बाबा इनसे बच्चों कहता, बच्चे उपराम हो जाओ, न्यारे हो जाओ। साथ साथ जो टकराव की स्थिति बताई, कहीं पर भी अगर हमारे शब्दों के आधार से, बोल के कारण, हमारे किसी एक संस्कार के कारण संगठन में टकराव की स्थिति पैदा होती है, जहां टकराव होते हैं वहां पर खुशी गायब हो जाती है, नहीं रह सकती। जहां पर किसी भी प्रकार का रायल मांग है, डिमांड है, वहां खुशी नहीं रह सकती। जहां पर किसी भी प्रकार की परतंत्रता है वहां खुशी नहीं रह सकती। आप सब चिंतन करें, अगर हमने ज्ञान के एक एक रहस्य को नहीं समझा, राज को नहीं समझा, तो हम खुश नहीं रह सकते। अगर हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा कैसे हो रहा है, तो हम खुश नहीं रह सकते। अब खुश रहने के लिए अपने समान में रहो, अपनी घोर तो नशा चढ़े, सच्चे रहो, बहुत सच्चे, बाबा की हम सच्चे बच्चे हैं, जहां सत्यता है वहां पर खुशी सदा कायम रहती है। संतुष्ट रहना है, सबकी दुआएं लेनी है, और अपने ऊंचे सम्मान में स्थित होकर के स्वराज्य अधिकारी बनकर रहना है। कर्म इंद्रियों की अधीनता हमारी खुशी को छीन ले जाती है, और जो कर्म इंद्रियों के मालिक हैं वो सदा खुश नसीब हैं, खुश नुमा हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे संगम पर इस खुशी का अनुभव करते एकदम उड़ते रहें, उड़ाते रहें, कभी भी गम का नाम निशान न रहे। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, आप बच्चे मेरे हो बेगमपुर के वासा, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, जैसे हमारे बाबा ने, हमारी दादियों ने इतना ऐसी श्रेष्ठ खुशनुमा जीवन जी, कभी भी कोई चीज की परवाह नहीं की, बेपरवाह वासा। सिर्फ परवाह थी तो एक ही चीज की थी, कि कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन न हो। अगर किसी ने भी मर्यादा की लकीर का उल्लंघन किया तो उसका हाल कैसा होगा, जैसे सीता जी का हुआ था। कहानी बनाई गई है, बहुत वंडरफुल कहानी, जिद का संस्कार, सिद्ध करने का संस्कार, परखने की शक्ति की कमी, कई बातें शोक वाटिका में ले जाती हैं। मर्यादा की लकीर का रिंचक भी उल्लंघन किया आत्मा ने तो वो कभी खुशी में नहीं रह सकता। इसलिए ईश्वरीय मर्यादाओं को अच्छी तरह से समझना, नहीं समझ में आता है तो मुरली के द्वारा मर्यादाओं को अपने पास नोट करके रखना। बहुत सारी मर्यादाएं बाबा ने बताई हैं, ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हमारी शोभाएं, हमारा श्रृंगार हैं। जो मर्यादा की लकीर को दृढ़ता से पालन करते हैं वो कभी भी शोक का, दुख का, गम का अनुभव नहीं करते, और जहां भी उल्लंघन हुआ वहां पर उसको बस भले बाबा बाबा करता रहे, लेकिन अंदर अंदर दुख की पीड़ा की अनुभूति जरूर होगी। वो बाबा से बिछुड़ जाएगा, बाबा से संबंध टूट जाएगा। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में चलते ज्ञान का स्मरण करो। कैसे ज्ञान का स्मरण करना? जैसे दिखाते हैं ना, विष्णु जी कहाँ लेते हैं? क्षीर सागर में शेष सैया को आसन बनाया हुआ है, पैर पर पैर चढ़ा के ज्ञान का मंथन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। ये है हमारे खुशी का चित्र, सांप की सैया। विषैले सांप है सारे वातावरण में, चारों तरफ से विकारों का साम्राज्य है, और उसके बीच में खीर का सागर नहीं है तो विषय सागर, विष का सागर है। उसके बीच में रहते हुए हम ज्ञान का सुमिरन करें, स्व का चिंतन करें, प्रभु का चिंतन करें, आत्मा खुश नसीबी का अनुभव करती है। और व्यर्थ का चिंतन अगर कर लिया, वो सुमिरन चलने लगा, नेगेटिव बातें देख लिया, तो खुशी गायब हो जाएगी। इसलिए हम सब संगम के खुश नसीब बच्चे हैं, खुश नुमा हैं, खुश किस्मत हैं, जो बाबा ने हमारी ऐसी ऊंची किस्मत बनाई है, तकदीर बनाई है। अब सिर्फ ध्यान देना, बाबा कहता दो चौकीदार जिसके पास है ना, उसकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, कोई चोर उसकी खुशी लूट नहीं सकता। वो दोनों चौकीदार हैं, एक अटेंशन और एक चेकिंग। बार बार अटेंशन रखो कि मैं ब्राह्मण कुलभूषण हूँ, ये मेरा नया जन्म है, मेरा अलौकिक जन्म है, मैं शूद्रपन से निकल आया, ये दुख धाम को छोड़ दिया, अब संगमवासी हूँ मैं। अटेंशन। और अगर कोई ऐसे संकल्प आते भी हैं, स्वप्न आते हैं, संकल्प आते हैं, चिंतन चलता है, तो चेक करो, लेकिन चेक करके निराश नहीं हो जाना, चेंज कर दो। चेक करो, चेंज करो। तो अगर ऐसी चेकिंग चल रही है, अटेंशन सदा रहता है, तो ये दोनों चौकीदार हमारी खुशी को गायब होने नहीं देंगे। इसलिए सभी बाबा के बच्चे खुश नसीब हो, खुश किस्मत हो, एक बाबा के प्यार में खोए रहो, मस्ती का अनुभव करो। कभी कभी कहो वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसे नशा रहता है, बड़े चुप होके शांति से सुन रहे हैं सब, रहता है? रहता है तो जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। संगम युगी ब्राह्मणों जैसा भाग्यवान और कोई नहीं, पूरे कल्प में नहीं है। ये स्वर्णिम युग नहीं है, ये डायमंड युग है। देवताओं को भी तो भगवान का साथ कहाँ मिलेगा? देवताओं को भगवान का साथ ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, भले सोने चांदी के महलों में रहें जाके। इतना अच्छा परिवार नहीं मिलेगा, बाबा नहीं मिलेगा। देवता बनेंगे ठीक है, दिव्य गुण होंगे, सतयुग की सृष्टि होगी, लेकिन संगम जैसा भाग्य तो पूरे कल्प में किसी को न मिला है न मिलेगा। तो इस नशे और खुशी में रह के चलो, बाबा के प्यार में खो जाओ। 7 बजे तक योग करेंगे ना, अभी हम सब आधा घंटे के लिए उस खुश नसीबी के अंदर बहुत नशे और खुशी के संकल्प करो कि सारा डायमंड हाल ऐसे लगे जैसे फरिश्तों का हाल है, और बाबा एकदम अपने बच्चों को खुशी की खुराक और सब शक्तियों का खजाना दे रहा है। मैं इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चैतन्य शक्ति मन और बुद्धि की यात्रा पर चलेंगे, अपने संकल्पों की शक्ति से इस साकार जगत को भूलते हुए बाबा के साथ अव्यक्त वतन में उनकी नजर से निहाल होने का अनुभव करेंगे। बाबा एक एक बच्चे को अव्यक्त वतन में बुलाकर विशेष शक्तियों की खुराक खिलाते हैं, उनकी शक्तिशाली दृष्टि का उनके वरदानी हस्त का। अनुभव करते हुए डबल लाइट फरिश्ता बनकर अव्यक्त वतन की सैर को।
खुश रहो मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिकर क्यों करे, अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिकर क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, सदा खुशी का ये मरम सुनाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, मेरे प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, चलो पूछे कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। यादों में है प्रभु के सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, यादों में है प्रभु के सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का, नाचो खुशी से नचाते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।